नमस्कार भारत, आज है 12 जुलाई दिन मंगलवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। हिजबुल कमांडर बुरहान वानी की मौत के कई दिन बाद भी कश्मीर घाटी में अशांति जारी, अब तक 30 लोगों की मौत।
बुरहान वानी वाला जो है, मुझे लगता है कि ये सोशल मीडिया के आधारित इसका जो रिस्पॉन्स आया है ये काफी एक प्रकार से डिस्टिंक्टिव है।
हिंसा प्रभावित दक्षिणी सूडान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने किया संघर्ष विराम का ऐलान। दिल्ली के एम्स अस्पताल में एक महिला के अपने मृत पति का शुक्राणु लेने की मांग से उठे कई सवाल।
कलेक्शन है, फिर उसको रिजर्व करना, अगेन यूज फॉर इंसेमिनेशन, तीन स्टेप्स हैं। जो तीनों स्टेप्स में लीगलिटीज बहुत है।
होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले बीबीसी समाचार विस्तार से।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। भारत सरकार भारत प्रशासित कश्मीर में कई सालों की सबसे ज्यादा हिंसा के बाद सुरक्षा व्यवस्था कायम करने के लिए 800 अतिरिक्त सुरक्षा बल भेज रही है। पुलिस के मुताबिक सरकारी बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पों में अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। घाटी में ताज़ा तनाव हिजबुल मुजाहिदीन के संदिग्ध कमांडर बुरहान वानी की सैन्य बलों के हाथों मौत के बाद पैदा हुआ है। हिंसा रोकने के लिए घाटी के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 अफ्रीकी देशों की 5 दिवसीय यात्रा के बाद भारत लौट आए हैं। मोदी मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका और तंजानिया के बाद रविवार रात केन्या पहुंचे थे। यहां उन्होंने राष्ट्रपति उहुरू केन्याता से मुलाकात की। मोदी ने नैरोबी यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा, आप इस महान उपमहाद्वीप को खुशहाल भविष्य की ओर ले जाएंगे। केन्या के युवाओं और अफ्रीकी समाज के सदस्यों के रूप में आपको उन लोगों पर नजर भी रखनी है जो कट्टरपंथी विचारों को फैलाते हैं। साथ ही आपको उन लोगों की आलोचना भी करनी है जो चरमपंथियों को शरण देते हैं और उनका राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं। ये थे केन्या की यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित कर रहे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द। दक्षिण सूडान में हुई ताजा हिंसा में शामिल दोनों पक्षों ने संघर्ष विराम का ऐलान किया है। राजधानी जुबा में कई दिनों चली हिंसा में सैकड़ों लोगों की मौत के बाद राष्ट्रपति साल्वा कीर और उनके विपक्षी उपराष्ट्रपति रीक माचार ने अपने समर्थक सैन्य बलों को हिंसा रोकने के आदेश दिए हैं। रीक माचार ने बीबीसी से कहा है कि ताजा हिंसा उन लोगों की योजना का हिस्सा है जो देश में शांति नहीं चाहते हैं। विपक्षी सैन्य बलों के बीच हुई हिंसा से दक्षिण सूडान में एक बार फिर गृहयुद्ध के से हालात बन गए हैं। ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनने जा रही टेरिजा मे ने भरोसा दिलाया है कि वे यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने की प्रक्रिया को कामयाब बनाएंगी। हालांकि उन्होंने यूरोपीय संघ से अलग होने के लिए बीते महीने हुए जनमत संग्रह में यूरोपीय संघ के साथ रहने का समर्थन किया था। टेरिजा मे ब्रिटेन की मौजूदा गृह मंत्री हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पद की दौड़ में उनकी एकमात्र प्रतिद्वंदी बची उम्मीदवार के दावेदारी वापस लेने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि अब वो ही अगली प्रधानमंत्री होंगी। अमेरिकी शहर डैलस के पुलिस प्रमुख ने कहा है कि टेक्सास प्रांत के नागरिकों को खुलेआम बंदूक ले जाने की अनुमति देने वाले कानून सुरक्षा व्यवस्था कायम करने में परेशानी पैदा कर रहे हैं। बीते सप्ताह पूर्व सैनिक मिकाह जॉनसन के 5 पुलिस वालों की गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद डैलस के पुलिस प्रमुख डेविड ब्राउन ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों ने कई लोगों को बंदूक ले जाते हुए देखा था और उन्हें शुरू में ये लगा था कि वे कई हमलावरों के निशाने पर हैं। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। जैसा आपने समाचारों में सुना, भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। राज्य में जारी हिंसक प्रदर्शनों में अब तक 30 लोगों की मौत हो गई है और 300 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। ये प्रदर्शन हिजबुल मुजाहिदीन के स्थानीय कमांडर बुरहान वानी के सुरक्षा बलों के हाथों मुठभेड़ में मारे जाने के बाद शुरू हुए थे। शांति बहाली के लिए राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने राजनीतिक दलों और अलगाववादी नेताओं से मदद की गुहार लगाई है। राज्य में कई जगह कर्फ्यू लगा हुआ है, मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। हालांकि 2 दिन तक बंद रहने के बाद अमरनाथ यात्रा अब शुरू हो गई है। सीधे चलते हैं श्रीनगर में बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर के पास। रियाज, सबसे पहले यही जानना चाहूंगा कि आज की सुबह कश्मीर घाटी में कैसी हुई है, क्या है ताजा हालात?
जी देखें, ताजा हालात तो ये है कि जाहिर है 4th दिन है कर्फ्यू का और 6 साल बाद ऐसी परिस्थिति में लोग दोबारा हैं
क्योंकि आपको याद होगा कि 2010 में भी मुसलसल डेढ़ महीने तक कर्फ्यू रहा, और कर्फ्यू में जाहिर मौतें भी हुई हैं, 30 लोग मारे गए हैं और 300 से ज़्यादा जख्मी हैं, अस्पताल जख्मियों से भरे पड़े हैं। लेकिन ये कर्फ्यू जब कंटिन्यू करता है और प्रतिबंध जो होता है वो भी कंटिन्यू करता है, तो उससे एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में फिर कॉन्वर्ट हो जाती है ये सिचुएशन। जैसे बच्चों के लिए बेबी फूड जो है वो हासिल करना, या खाने पीने की चीज़ें, या बीमारों को शिफ्ट करना हॉस्पिटल, इन सब चीज़ों में लोगों को मुश्किलात अब मुझे लगता है कि कल शाम से ही ऐसी कुछ इतलात आई थी। और ये अगर डील नहीं देती है प्रशासन कर्फ्यू में, तो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हो सकता है।
रियाज, प्रशासन और पुलिस के स्तर पर जो नाराज़ प्रदर्शनकारी हैं उनको शांत करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है?
आपने समाचारों में भी बताया वो कि जो मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती हैं, उन्होंने पहले तो एक कैबिनेट का इजलास बुलाया था, तो उसमें उसके बाद उन्होंने अपील की। हालांकि ये बहुत ही अनकन्वेंशनल है बीजेपी और पीडीपी की कोलिशन गवर्नमेंट का, क्योंकि बीजेपी का ये आइडिया है कि सेपरेटिस्ट किसी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, अलगाववादियों का कोई पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है, तो वो लोग जो है उनको बिल्कुल आइसोलेट करने की पॉलिसी थी। अब चूंकि पूरा कश्मीर जो है वो तनावग्रस्त हो गया है, तो पहली बार अपनी पॉलिसी में लचक लाते हुए सरकार ने अलगाववादियों से अपील की है कि वो उनकी मदद करें। और दूसरी तरफ कल ही जो है भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक तरह का पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू किया। उन्होंने एक तो भारत में अपोजिशन की नेता सोनिया गांधी को फोन किया और उनको कहा कि कश्मीर के बारे में वो अपना योगदान दें, और साथ ही यहाँ के अपोजिशन नेता उमर अब्दुल्ला को फोन पर बताया कि वो अपना योगदान दें। तो इस तरह से अभी बहुत इन्फेंसी में है, लेकिन एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो गया है। अब ये डिपेंड करता है कि इस पॉलिटिकल प्रोसेस को अलगाववादी किस तरह से वो अपनी प्रतिक्रिया दिखाएंगे।
और बहुत संक्षेप में बताइएगा कि हिंसा जो है उसकी जो इंटेंसिटी की बात करें तो वो कम होती नजर आ रही है क्या?
जी नहीं, अगर हम कल शाम की बात करें तो दक्षिणी कश्मीर में
हमारा संपर्क आज एक बार फिर से उनसे टूट गया। दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं और इसी खबर की बात करते हैं। कश्मीर घाटी में जारी तनाव और प्रदर्शनकारियों के आक्रोश के बारे में हमारे सहयोगी मोहनलाल शर्मा ने बात की कोमोडोर सी उदय भास्कर से और पूछा कि पहले की घटनाओं से इस बार के प्रदर्शन कितने भिन्न हैं।
अगर साहब हम पिछले 25-26 साल का जो भी तजुर्बा या अनुभव रहा है जम्मू कश्मीर में उसका समीक्षा करें, तो कई बार इस प्रकार के स्पाइक्स जो हैं हुए हैं ज़रूर। मैं 1990 में कहूँगा जहाँ से शुरुआत है, शायद ये जो बड़ा का जो संख्या है, हम इसको किस मैट्रिक या किस तुलने से हम करें। एक समय था जब 10,000 का जो नंबर्स है, जब किसी मान लीजिए टेररिस्ट लीडर का या किसी भी व्यक्ति का फ्यूनरल पे आते थे, तो हम सोचते थे कि ये बहुत बड़ा है, तो धीरे धीरे ये बढ़ता गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हर एक बार ये जो माहौल है ये अपने आप इसके कुछ लक्षण होते हैं। और इस बार जो बुरहान वानी वाला जो है, मुझे लगता है कि ये सोशल मीडिया के आधारित इसका जो रिस्पॉन्स आया है ये काफ़ी एक प्रकार से डिस्टिंक्टिव है। और जहाँ तक रिपोर्ट्स मैंने देखा है, कहा जा रहा है कि इनके फ्यूनरल के लिए लोग 70-80 मील के दूरी से आए हैं, तो अर्थात ये कि पूरे घाटी में इसका एक प्रभाव ज़रूर हुआ है, खास यंग डेमोग्राफी के ऊपर।
चाहे मैं पृथकतावादियों की बात करूं, तो जो तमाम पृथकतावादी हैं या फिर सरकार है, भारतीय सेना को लेकर हमेशा ये बात आती है कि वो ज्यादती करती है, और इस बार भी वो मामला है। तो आपको क्या लगता है कि भारतीय सेना जिम्मेदार है जातियों के लिए, और किस तरह की जातियाँ?
साहब देखिए, मैं सिक्योरिटी एनालिस्ट हूँ और कई बार ये सवाल उठता है, और मेरा व्यक्तिगत राय यह है कि आपने सिक्योरिटी फोर्सेस को एक जिम्मेदारी सौंपा है, और हिजबुल मुजाहिदीन जिसका ये एक कमांडर था बुरहान वानी, वो एक दहशतगर्दी गुट है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका जो टेररिस्ट स्टेटस जो है भारत स्वीकार करता है, अमेरिका स्वीकार करता है, यूरोपियन यूनियन भी हिजबुल मुजाहिदीन को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तरह उन्होंने घोषित किया है।
जो सवाल मैंने पूछा था कि क्या भारतीय सेना जो जातीय कर रही है?
नहीं सर, मैं कहूँगा कि उनके लिए ये एक प्रकार का ये ऑपरेशनल जो जिम्मेदारी उनको सौंपा दिया है कि सिक्योरिटी ग्रिड जो भी होता है उनको वो संभालना है। और वहाँ पे तीन प्रकार के फोर्सेस हैं, पुलिस भी है, पैरामिलिट्री भी है और भारतीय स्थल सेना है, आर्मी, राष्ट्रीय राइफल्स जो वहाँ पे हैं। तो इस प्रकार का जो ऑपरेशन जब होता है, ये अंदाज़ा करना है कि क्या फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनेट है कि डिसप्रोपोर्शनेट है, और किस प्रकार से ऑपरेशन या कार्रवाई करना, इसको सेकेंड गेस करना बड़ा मुश्किल है। और अगर दोबारा मैं कहूँगा 20-22 साल जो भी अभी ऑपरेशन्स वहाँ पे हुई हैं और भारतीय स्थल सेना का डिप्लॉयमेंट वहाँ हुआ है, तो उनको अपना जो सेफ्टी सिक्योरिटी खुद संभालना है, साथ साथ ऑपरेशन करना है। और ये जो है, मेरे ख्याल से इसके डिटेल्स अभी धीरे धीरे आएंगे, मैं इसको एक्सेसिव यूज़ ऑफ फोर्स नहीं कहूँगा, क्योंकि उनको इंटेलिजेंस मिला था कि इस प्रकार का अभी जो ग्रुप है और वो कुछ कार्रवाई करने में लगे हैं। और जहाँ तक बुरहान वानी है, उनको घोषित किया गया था कि वो एक कमांडर है और उनके ऊपर काफ़ी एक अवार्ड भी था। और जहाँ पे किसी प्रकार का अगर एक्सेस हुआ है, मैं कहूँगा कि इंडियन आर्मी सबसे पहले अपना जांच करती है। और मैं आपसे ये भी कहूँ कि जहाँ तक मैंने इसको काफ़ी बारीकी तरीके से मैंने इसका समीक्षा किया है, जितने भी केसेस रजिस्टर हुए हैं कि एक्सेसिव फोर्स यूज़ हुआ है, खास मैं इंडियन आर्मी की बात कर रहा हूँ, 97% तक वो फॉल्स निकले हैं, यानी कि वो बेबुनियादी हैं।
ये थे कोमोडोर सी उदय भास्कर, जिनका मानना है कि भारतीय सेना भारत प्रशासित कश्मीर में अनावश्यक बल प्रयोग नहीं कर रही है। भारतीय कश्मीर के ताज़ा घटनाक्रम को देखते हुए श्रीनगर से मुजफ्फराबाद तक जाने वाली बस सेवा को फिलहाल रोक दिया गया है। ये सेवा साल 2005 में दोनों ओर के परिवारों को मिलाने और व्यापार बढ़ाने के मकसद से शुरू की गई थी। मुजफ्फराबाद में कारोबार दफ्तर से जुड़े एक बड़े अधिकारी शाहिद अहमद ने BBC से कहा,
अभी हमारे यहाँ से जाने वाले 58 के करीब लोग थे जिन्होंने यहाँ से जाना था, क्रॉस बॉर्डर से अराउंड 30 लोग थे जिन्होंने वहाँ से आना था, लेकिन हालात इस तरह के किसी की आदि हालात में कि वो नहीं हो सका और ये आज का जो ट्रेवल है ये कैंसिल हो गया। अभी आगे 4 दिन ट्रेड के हैं, वो भी मुझे लग रहा है कि ट्रेड भी शायद 2-3 रोज ना हो सके क्योंकि हालात ठीक नहीं वहाँ पे। देखें अभी जब हालात ठीक होंगे तो इंशाल्लाह उसके बाद ये एक्टिविटी जारी रखूंगा।
श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सेवा के बारे में, उस जो फिलहाल रोक दी गई है उसके बारे में बता रहे थे वहाँ के एक अधिकारी शाहिद अहमद। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के एक बयान पर भारत ने एतराज़ जताया है। उन्होंने कहा था कि हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने से उन्हें गहरा सदमा पहुँचा है। इस बयान की भारत ने कड़े शब्दों में निंदा की है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा,
We have seen statements from Pakistan on the situation in the Indian state of Jammu and Kashmir. They reflect
विकास स्वरूप कह रहे थे, हमने भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान का बयान देखा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बयान आतंकवाद के प्रति पाकिस्तान के लगाव और उसे हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की सरकारी नीति को दर्शाता है। हम पाकिस्तान को सलाह देते हैं कि वो अपने पड़ोसियों के अंदरूनी मामलों में दखल न दे। ये थे विकास स्वरूप के शब्द। इस पूरे घटनाक्रम पर हमारे सहयोगी मोहनलाल शर्मा ने बात की इस्लामाबाद में BBC उर्दू संवाददाता हारून रशीद से और पूछा कि इस मामले को लेकर पाकिस्तान में राजनीतिक स्तर पर क्या कुछ चल रहा है।
जो सेक्रेटरी खारजा हैं, फॉरेन सेक्रेटरी पाकिस्तान के चौधरी एजाज सैयद, उन्होंने जो इंडियन हाई कमिश्नर हैं इस्लामाबाद में, उनको फॉरेन ऑफिस तलब किया है। और जो उनका कहना है कि जो वहाँ की सेना कर रही है कार्रवाइयाँ उसको भारतीय सरकार रोके। ये प्रधानमंत्री नवाज शरीफ साहब ने एक बयान जारी किया था, उनका ये कहना था कि भारत जो है वो बकौल उनके जो कश्मीर में वहाँ के लोगों पर जुल्म कर रहा है उसको रोकना होगा, वहाँ जो लोगों के एहतजाज को प्रदर्शन को रोकने के लिए रास्ता अख्तियार किया जा रहा है वो एक तो गैर कानूनी है और दूसरा जो ताकत का इस्तेमाल है वो जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान का पुराना एक मांग चली आ रही है कि यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस के तहत कश्मीर के मसले को हल करने की जरूरत पर दोबारा जोर दिया है।
हारून साहब, अगर इस पूरे मामले को देखा जाए तो पाकिस्तान को क्या है कि ये मुद्दा मिल गया है, कश्मीर मुद्दा एक बार फिर से मिल गया है?
जी बिल्कुल, काफी अरसे से शांत मामले चल रहे थे और कोई ज्यादा कश्मीर पर बातचीत नहीं हो रही थी, तो ये जब कश्मीर में हालात खराब हुए हैं बुरहान वानी की हलाकत के बाद और जब से वहाँ पर प्रदर्शन शुरू हुए हैं तो एक तरह से पाकिस्तान भी उसमें कूद पड़ा है। और जिस तरह माजी में हुआ है कि इस तरह के वाकयात پر پاکستان نے زور سے بیان دیے ہیں اس مرتبہ بھی وہی لگ رہا ہے. لیکن جو پاکستان کی اپوزیشن ہے, جماعتیں ہیں, جیسے کہ شیخ رشید صاحب ہیں, عوامی مسلم لیگ کے نیتا ہیں, وہ پاکستان کے ری ایکشن سے ابھی تک خوش نہیں ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ پردھان منتری نواز شریف اور مودی جو ہیں وہ ان کی ناراضگی کبھی منہ نہیں لیں گے, اور وہ ان کے بیانات کافی نرم ہیں, اور پاکستان کو اس پر کافی سخت پوزیشن لینی چاہیے, جو کہ پاکستان نہیں لے رہا پردھان منتری نواز شریف کے تحت انڈر.
ہارون صاحب, پورے پاکستان کے میڈیا میں, سوشل میڈیا میں یہ جو کشمیر میں ہو رہا ہے اس کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے؟
دیکھیں, یہاں کے میڈیا بھی کافی اس کو بڑی کوریج دے رہا ہے جو بھی وہاں پر ہو رہا ہے, پھر یہاں سوشل میڈیا میں بھی کافی اس کی چرچا ہو رہی ہے, اور پاکستانی تو اکثر اس کو پاکستانی سرکار کی نظر سے ہی دیکھتے ہیں, اور تشدد کو کچھ لوگ نہیں ہوتا تو یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان خود اتنا عرصہ تشدد کا شکار رہا ہے, خراب حالات کا شکار رہا ہے, تو اس طرح کی صورتحال وہاں کشمیر میں وہ نہیں دیکھنا چاہتے, اور چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا جو حل ہے وہ پرامن طریقے سے اور بات چیت کے ذریعے ہی نکلنا چاہیے.
یہ تھے اسلام آباد میں بی بی سی اردو کے سنواد داتا ہارون رشید.
خبر سچ ہے اگر بی بی سی پر ہے.
دکشنی سوڈان میں پچھلے کئی دن کی ہنسا کے بعد راشٹرپتی سلوا کیر اور ان کے وپکشی اپراشٹرپتی ریک ماچار نے سنگھرش ویرام کا اعلان کیا ہے. دنیا کا سب سے یوا دیش دکشنی سوڈان اپنے جنم کے سمے سے ہی ہنسا سے پربھاوت رہا ہے. پچھلے کچھ دنوں سے ہو رہی لڑائی راشٹرپتی اور اپراشٹرپتی کے سمرتھکوں کے بیچ ہو رہی ہے, جس میں اب تک 200 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے. پوری جانکاری دے رہے ہیں دل نواز پاشا.
دکشن سوڈان کی راجدھانی جوبا میں بیتے کئی دنوں سے جاری ہنسا میں 200 سے ادھک لوگوں کی موت کے بعد راشٹرپتی سالوا کیر اور ان کے وپکشی اپراشٹرپتی ریک ماچار نے سنگھرش ورام کا آدیش دیا ہے. راشٹرپتی کی اور سے استھانیہ ٹی وی پر سنگھرش ورام کا اعلان کرتے ہوئے سوچنا منتری مائیکل ماکوئی نے کہا,
All the commanders of these forces are hereby directed.
سینیہ بلوں کے سبھی کمانڈروں کو آدیش دیا جاتا ہے کہ وہ ہنسا روک دیں اور اس آدیش کا پالن کریں, سینیہ بلوں کو نینترن میں رکھیں اور ناگرک سمپتی کی رکشا کریں. سبھی سینیہ بلوں کے کمانڈروں کو آدیش دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے سینکوں کو نینترن میں رکھیں اور ایسے کسی بھی نسلی سموہ کی رکشا کریں جسے سینیہ بل نشانہ بنا رہے ہوں. وپکشی ایس پی ایل اے آئی او کے سینک یدی ایس پی ایل اے کو آتم سمرپن کرتے ہیں تو ان کی رکشا کی جائے. راشٹرپتی کی اور سے سنگھرش ورام کا آدیش دیے جانے کے بعد اپراشٹرپتی ریک مچار نے بھی اپنے سمرتھک سینیہ بلوں سے ہنسا روکنے کے لیے کہا. ایک استھانیہ ریڈیو سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا, راشٹرپتی نے ایک پکشیہ سنگھرش ورام کا اعلان کیا ہے. میں بھی 8 بجے سے ایک طرفہ سنگھرش ورام کا اعلان کرتا ہوں اور سبھی سینیہ بل جو اپنی رکشا کر رہے ہیں انہیں جانکاری دیتا ہوں کہ وہ اس سنگھرش ورام کا سمان کریں اور جہاں ہیں وہیں رہیں. ریک ماچار نے بی بی سی سے یہ بھی کہا ہے کہ تازہ ہنسا ان لوگوں کی سوچی سمجھی یوجنا کا حصہ ہے جو دکشن سوڈان میں شانتی نہیں چاہتے ہیں. اسی بیچ سنیکت راشٹر مہا سچیو بان کی مون نے کہا ہے کہ ناگرکوں کی سرکشا کے لیے سنیکت راشٹر شانتی بلوں کے پریسروں کی سرکشا ویوستھا بڑھائی جائے گی. بان کی مون نے دکشن سوڈان کے لیے ہتھیاروں کی بکری پر پابندی اور ان لوگوں پر پرتبندھ لگانے کی بات بھی کہی ہے جو پچھلے سال کے شانتی سمجھوتے کی شرطوں کا الگھن کر رہے ہیں. بان کی مون نے کہا,
Impose an immediate arms embargo on South Sudan. Second, enact additional targeted sanctions on leaders.
دکشن سوڈان کے لیے ہتھیاروں کی بکری پر ترنت روک لگائی جائے, ان نیتا اور کمانڈروں پر اترکت پرتبندھ لگائے جائیں جو شانتی سمجھوتے کا الگھن کر رہے ہوں, اور سنیکت راشٹر کے پریسروں کی سرکشا بڑھائی جائے. ہمیں دکشنی سوڈان میں ناگرکوں کی رکشا کرنے کے لیے ترنت لڑاکو ہیلی کاپٹروں اور انیہ سامانوں کی ضرورت ہے. بان کی مون نے شانتی بلوں میں شامل دیشوں سے اپنے سینک بنائے رکھنے کی اپیل کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ یدی کوئی دیش دکشن سوڈان سے اپنے شانتی بل واپس بلاتا ہے تو اس کا دکشن سوڈان اور وشو میں غلط سندیش جائے گا. دکشن سوڈان دنیا کا سب سے یوا راشٹر ہے. یہاں 2 سال چلا گرہ یدھ 2015 میں شانتی سمجھوتے کے ساتھ ختم ہو گیا تھا. راشٹرپتی سالوا کیر اور ان کے وپکشی اپراشٹرپتی ریک ماچار کے سمرتھک سینیہ بلوں کے بیچ ہوئی تازہ ہنسا نے دیش کو ایک بار پھر گرہ یدھ کے مہانے پر کھڑا کر دیا ہے.
جانکاری دے رہے تھے دل نواز پاشا. دکشنی سوڈان میں بڑی سنکھیا میں بھارتی لوگ بھی رہتے ہیں اور کئی لوگ کاروبار کے سلسلے میں وہاں آتے جاتے رہتے ہیں. لڑائی چھڑنے کے بعد سے یہ بھارتی لوگ وہاں اسرکشت محسوس کر رہے ہیں. ہمارے سہیوگی ونیت کھرے نے راجدھانی جوبا میں موجود ایسے ہی ایک شخص ویر دہیا سے بات کی.
ہمارا فارماسیوٹیکل بزنس ہے تو ہم لوگ ادھر آئے تھے. ہم لوگ کا فلائٹ کل کا تھا, وہ فرائیڈے سے ہی ایئرپورٹ بند ہے اور अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, पर मेरी भाभी ने सुषमा स्वराज जी को ट्वीट किया था, नो डाउट मुझे रिस्पॉन्स आया कि आप इंडियन एम्बेसी मुझे रिपोर्ट करेगी, तो उनने इमीजिएटली मुझे फोन किया और उनने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया इंडियन एम्बेसी के नाम से। तो जो भी है हमको इन्फॉर्मेशन का टाइम टू टाइम आ रहे हैं, पर ये समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ से कब जा पाएंगे। सिर्फ ये आ रहा है सिचुएशन, यहाँ बॉम्ब हो रहा है, वहाँ बॉम्ब हो रहा है, पर आखिर में आगे क्या होने वाला वो समझ में नहीं आ रहा अभी तक।
जी, जुबा में करीब कितने भारतीय हैं वीर, और भारत में आप कहाँ के रहने वाले हैं?
मैं मुंबई से हूँ, और जुबा में मेरा तो पहली बार है। जो तरीके से मैं समझ रहा हूँ, कम से कम 300 होंगे, 300 भारतीय यहाँ होंगे।
जी जी, और एम्बेसी वाले कह रहे हैं कि मतलब अभी वो क्लियर नहीं हो रहा, आप कह रहे हैं कि कब तक आप निकल पाएंगे?
हाँ, क्योंकि यहाँ का सिचुएशन को समझ में नहीं आ रहा है कि ये होने क्या वाला है, क्या क्या होगा। एक्चुअली क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है तो सिर्फ ये आ रही है, ये एरिया में ये हो रहा है, वो एरिया में ये हो रहा है, पर ये नहीं समझ में आ रहा है कि हालात कब ठीक होने वाले हैं। जो मुझे अभी तक तो शांत लग रहा है, पर अभी जैसे व्हाट्सएप का भी मैसेज वापस चालू हो गया, सुबह से कोई एरिया में वापस शूटिंग चालू हो गई है।
कुछ चीजें अगर आपने कुछ देखी है उसके बारे में बता पाएंगे?
हाँ, कल शाम को जब हम लोग बैठे हुए थे होटल के अंदर, तो एक बहुत जोर से एक बॉम्ब की आवाज आई थी। बम में एंड ऑफ द डे मालूम पड़ा कि वो एक्चुअली ये लोग ने एक पेट्रोल पंप को ही उड़ा दिया था, और गोलियां की तो गिनती है ही नहीं, मतलब आवाज आई ही रही है।
ये थे जुबा में मौजूद भारतीय कारोबारी वीर दहिया, जो वहां असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
क्या एक औरत का अपने पति की मौत के बाद उसके स्पर्म यानी शुक्राणु पर अधिकार होता है? भारत के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डॉक्टर्स के सामने यही सवाल था, जब एक औरत ने पोस्टमार्टम के वक्त अपने पति के स्पर्म निकाले जाने की दरख्वास्त की। पूरी जानकारी दे रही हैं दिव्या आर्य।
एक मर्द के शरीर से शुक्राणु निकालकर कृत्रिम तरीके से औरत के शरीर में डालने या किसी लैब में अंडाणु से मिलाने जैसी विधाओं का इस्तेमाल अब भारत में कई वर्षों से हो रहा है। ये उन दंपतियों के लिए मददगार हैं जो प्राकृतिक तरीके से बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हों। पर ऐसे मामले में क्या जब माँ बाप बनने से पहले ही एक पति की मौत हो जाए? एम्स अस्पताल में फोरेंसिक मेडिसिन के प्रमुख डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने बीबीसी को बताया कि हाल ही में एक महिला ने अपने पति की मौत के बाद भी उसके बच्चे की माँ बनने की इच्छा जताई, पर वो ये दरख्वास्त नहीं मान पाए।
नहीं कर सकते हम लोग ना, कलेक्शन इज नॉट ओनली इशू, कलेक्शन है, फिर उसको रिजर्व करना, अगेन यूज फॉर इंसेमिनेशन, तीन स्टेप्स हैं। जो तीनों स्टेप्स में लीगलिटीज बहुत हैं। उसके बाद बच्चा होगा तो उसको, बच्चे को मान लीजिए कल को डिजॉर्न कर दिया, ये तो बच्चा पिता के डेथ के बाद पैदा हुआ है, तो दीज ऑल रिक्वायर्ड टू बी सेटल्ड फर्स्ट।
मृत्यु के बाद भी मर्द के अंडकोश में शुक्राणु कुछ समय तक जीवित रहते हैं, पर उनके निकाले जाने के बारे में भारत में फिलहाल कोई नीति निर्देश नहीं है। हालांकि IVF और सरोगेसी जैसी तकनीक के लिए साल 2010 में बनाई गई असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज गाइडलाइंस में स्पर्म डोनेशन का प्रावधान है। इसके मुताबिक अगर एक मर्द अपने होशो हवास में अपने शुक्राणु दान करता है तो उनका इस्तेमाल उसकी मौत के बाद भी किया जा सकता है, पर यह फैसला होश में किया जाना जरूरी है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता बताते हैं कि ये अकेला मामला नहीं था, इससे पहले भी उनके पास ऐसे आवेदन आए हैं।
कपल ऑफ केसेस आए हैं जिसमें रिक्वेस्ट किया गया कि आप रिट्रीव कर सकते हैं तो कर दीजिए। एट द टाइम ऑफ पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट विक्टिम है, बच्चे नहीं है, न्यूली मैरिड है या बच्चे नहीं हुए हैं।
भारत में छपने वाले जर्नल ऑफ रिप्रोडक्टिव साइंसेज में इस सवाल पर हाल ही में किए शोध में पाया गया कि नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में इस पर कोई दिशा निर्देश नहीं है, जबकि पाकिस्तान में इस पर पूरी पाबंदी है। कानून की नज़र में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की मदद से पैदा हुए बच्चे को दंपत्ति का वारिस माना जाता है और उसका उनकी जायदाद पर भी हक होता है, लेकिन बच्चा अगर मृत्यु के बाद शुक्राणु निकालकर पैदा किया जाए तो उसे वारिस माना जाएगा या नहीं, इस पर कोई दिशा निर्देश नहीं है। पर डॉक्टर सुधीर गुप्ता मानते हैं कि कानूनी दर्जे के अलावा कोई भी गाइडलाइंस बनाने से पहले ये सोचना भी जरूरी है कि ऐसे पैदा किए बच्चे को समाज में वैध दर्जा मिलेगा। दिव्या आर्य, BBC दिल्ली।
और अब वक्त है अखबारों की समीक्षा का। दिलनवाज पाशा को मैं देख रहा हूँ स्टूडियो में, तमाम अखबार फैला चुके हैं ये, नई दुनिया, जनसत्ता, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, अमर उजाला, क्या है आज की खबरें दिलनवाज
जी? अमरेश, आज भी कल की तरह ही कश्मीर के में जो तनाव है उससे जुड़ी खबरें पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित की गई हैं। जिक्र करूंगा हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित एक तस्वीर का, जिसमें खाली सड़क पर एक व्यक्ति जा रहा है और पीछे लगी दुकान के शटर पर लिखा है बुरहान अवर हीरो, यानी बुरहान हमारे हीरो हैं। बाकी अखबारों ने भी अलग अलग तस्वीरें प्रकाशित की हैं। एक और खबर है जो ध्यान खींच रही है, वो है केरल से लापता 21 लोग जो हैं वो इस्लामिक स्टेट के कैंपों में हो सकते हैं, ऐसा कहा है केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने। और इसी से जुड़ी एक खबर द टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले पन्ने पर है। इसके मुताबिक जो केरल के सलाफी मुसलमान हैं वो श्रीलंका में सच्चा इस्लाम खोज रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक स्टेट से जुड़ने वाले कम से कम 3 युवाओं ने अपने परिजनों को बताया है कि वो हदीस की शिक्षा के लिए केरल जा रहे हैं।
ये खबर हमने bbcsindhi.com पर भी कवर की है
जी। बहुत शुक्रिया। एक दैनिक भास्कर के पहले पन्ने पर एक खास खबर प्रकाशित है, जिसमें एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है, अमर सिंह नाम है इनका। ये अपनी दुकान में प्रतिदिन नए तरीके की पोशाक पहनकर बैठते हैं ताकि लोगों का ये मनोरंजन कर सकें। और एक और खबर मैं जल्दी में बताना चाहूंगा, तेलंगाना भारत का ऐसा पहला प्रांत होगा जिसका अपना विदेश मंत्री होगा
जी। समय नहीं है, आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेलने के लिए आजकल वेस्टइंडीज में है। पहला टेस्ट 21 जुलाई से खेला जाएगा, लेकिन उससे पहले वार्म अप मैच में क्या कुछ चल रहा है बता रहे हैं आदेश कुमार गुप्त।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। पिछले दिनों विंबलडन और यूरो कप ही खबरों में छाया रहा, जबकि इसी बीच भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों वेस्टइंडीज का दौरा कर रही है, जहां वो 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। टेस्ट सीरीज से पहले विराट कोहली की कप्तानी में खेल रही भारतीय टीम वेस्टइंडीज की आबो हवा में अपने आप को ढालने की कोशिश कर रही है, और इसी कड़ी में उसने वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड अध्यक्ष एकादश के खिलाफ 2 दिवसीय अभ्यास मैच भी खेला, जो बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सलामी बल्लेबाज KL राहुल ने रिटायर्ड आउट होने से पहले 50, शिखर धवन ने 51 और चेतेश्वर पुजारा ने 34 रन बनाकर खुद के अच्छी फॉर्म में होने के संकेत दिए। इनके अलावा रोहित शर्मा ने भी नाबाद 54 रन बनाकर अपना दमखम दिखाया, लेकिन कप्तान विराट कोहली केवल 14 रन बना सके। भारत ने अपनी पहली पारी 6 विकेट पर 258 रनों के स्कोर पर समाप्त घोषित की, लेकिन इसके बाद वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड अध्यक्ष एकादश ने भी जोरदार जवाब देते हुए 7 विकेट खोकर 281 रन बनाए। उनके शाही होप ने 229 गेंदों पर 15 चौकों की मदद से नाबाद 118 रन बनाए। उनके अलावा सलामी बल्लेबाज राजेंद्र चंद्रिका ने 69 और जोमल वारिकान ने नाबाद 50 रन बनाए, यानी भारतीय गेंदबाजों को खासा पसीना बहाना पड़ा। यूं तो मैच में भारत के भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, उमेश यादव और ईशांत शर्मा ने काफी गेंदबाजी की, लेकिन सबसे अधिक कामयाब रहे लेग स्पिनर अमित मिश्रा, जिन्होंने 67 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। अब भारतीय टीम दूसरा अभ्यास मैच 14 से 16 तारीख तक खेलेगी। उधर अमरीकी ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग का खिताब कोरिया के लिए ह्यून ने जापान के कांता तुसेनेयामा को 24-22, 21-8 से हराकर जीता, तो महिला एकल वर्ग का खिताब जापान की अयुमी मिने ने अपनी ही हमवतन सैना कावाकामी को 16-21, 21-11, 21-15 से हराकर जीता। इस टूर्नामेंट में भारत के भी अनेक खिलाड़ी खेल रहे थे, लेकिन चौथी वरीयता हासिल अजय जयराम ही सेमीफाइनल तक पहुंच सके। उधर भारत की स्टार महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा भले ही विंबलडन में दमदार खेल नहीं दिखा सकी, लेकिन वो महिला युगल रैंकिंग में अभी भी संयुक्त रूप से पहले स्थान पर बनी हुई हैं। वहीं पुरुष युगल वर्ग में भारत के रोहन बोपन्ना 14वें और लिएंडर पेस 59वें स्थान पर पहुंच गए हैं।
कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
भारत सरकार भारत प्रशासित कश्मीर में कई सालों की सबसे ज्यादा हिंसा के बाद सुरक्षा व्यवस्था कायम करने के लिए 800 अतिरिक्त सुरक्षा बल भेज रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 अफ्रीकी देशों की 5 दिवसीय यात्रा के बाद भारत लौट आए हैं। दक्षिण सूडान में हुई ताज़ा हिंसा में शामिल दोनों पक्षों ने संघर्ष विराम का ऐलान किया है। ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनने जा रही टेरेसा मे ने भरोसा दिलाया है कि वे यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने की प्रक्रिया को कामयाब बनाएंगी। पराग्वे में एक जज ने 4 साल पहले एक प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों की मौत के मामले में 11 गरीब किसानों को 30-30 साल की सजा सुनाई है। बीबीसी समाचार।
इसी के साथ नमस्कार, भारत का ये अंक अब यहीं समाप्त होता है। आपसे हमारी अगली मुलाकात अब से बस थोड़ी देर बाद विश्व भारती में होगी। कार्यक्रम के दौरान स्टूडियो संचालन किया अजित सारथी ने। तो अब अमरेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।